बहुत बढ़िया लेख है, मनन करने योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति के शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए हैं, कोई संख्या ही नहीं है, परंतु हम एक बात आपको खास बताते हैं। प्रतिकूलता में प्रसन्न रहिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसी भी परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, उसमें एकदम प्रसन्न रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में मन की प्रतिकूलता से सब दोषों की सृष्टि होती है। मन की प्रतिकूलता में दोषों का कोई ठिकाना ही नहीं है। मन की प्रतिकूलता में सर्वप्रथम क्रोध की सृष्टि होती है, परंतु मन की अनुकूलता में कभी क्रोध नहीं आता। मन की प्रतिकूलता में द्वेष भी बढ़ता है। जो हमारे मन के अनुकूल चले उसके साथ द्वेष थोड़ा ही करते हैं, प्रसन्नता होती है, परंतु भूल जाते हैं कि उसके साथ राग तो होता ही है ना। मन की प्रतिकूलता में द्वेष ही नहीं, उससे और भी आगे बढ़कर बैर तक बांध लेते हैं। मन की प्रतिकूलता में क्रोध भी होता है और दुख भी होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच अविद्या की गांठें हैं। इतना ही नहीं, प्रतिकूलता में आपस में प्रतिद्वंद्वता होती है, जिससे अमर्ष पैदा होता है, जलन पैदा होती, अंदर ही अंदर जलन, ये मेरे से आगे क्यों हो गया, इसको लोग ज्यादा क्यों पूछते हैं, ये ऐसा क्यों हो गया, दूसरे का उत्कर्ष देखकर और उस उत्कर्ष के द्वारा वो हमारे लिए कोई तकलीफ पहुंचाता है, तो अमर्ष पैदा होता है। ये सब प्रतिकूलता में प्रसन्न न रहने के कारण से होता है। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या प्रतिकूलता में भी अनुकूलता समझी जा सकती है? क्या समझी तो जा सकती है, पर बहुत गहरी बात है। आप यदि क्रोध करें तो हमारे में ऐसी कोई करामात नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपकी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दूं। भगवान तो सब कर सकते हैं, पर जब आप भगवान को माने तब ना। ध्यान देना चाहिए कि जो भी कुछ मन के प्रतिकूल व्यवधान होता है वह सब भगवान की इच्छा से होता है। यहां से प्रसन्न होने का रास्ता खुलता है। दोबारा सुन लो, जो कुछ भी मन के प्रतिकूल होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। भगवान की आज्ञा के बिना नहीं होता। किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो, कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी काम का बनना हो, बिगड़ना हो, सब भगवान की आज्ञा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। और भगवान की इच्छा में सबके प्रति कल्याण और हित की भावना भरी रहती है। भगवान किसी के साथ बदले की कार्यवाही नहीं करते। यदि भगवान बदले की कार्यवाही करके हमको दुख देते तो भगवान में और दूसरे सामान्य आदमी में अंतर ही क्या होता। बड़े दयालु हैं। इस बात पर आप विश्वास करें तो आपके मन में प्रतिकूलता ठहर ही नहीं सकती है। इतना ही नहीं है, ये बात खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए, निसंदिग्ध समझ में आ जाए, तो आप सर्वथा दोष रहित होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वातीतो विमत्सर है, समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान की इच्छा से जो आकर प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। हर शोक राग द्वेष सुख दुख ये द्वंद्व मिट जाए तो सब मामला ही खत्म हो जाए। जो पुरुष संसार के दुखों और सुखों में भगवान की इच्छा मानकर आनंद का अनुभव करता है उसके हृदय में द्वंद्व आ ही नहीं सकते हैं। भगवान का विधान मानकर संतोष करो और मत्सरता का अभाव मनुष्य में तभी होगा, जलन। उसके लिए फिर मत्सरता यानी ईर्ष्या की गुंजाइश नहीं रहती। वह व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह कभी पाप का भागी नहीं होता। इसलिए पापों से लिपायमान नहीं होने का उपाय बताया कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। सभी कर्म भगवान की आज्ञा अनुसार करने चाहिए। दैव इच्छा अनिच्छा और परेच्छा से जो घटना घटे उसको ईश्वर की इच्छा मान लेनी चाहिए। प्रतिकूलता में मन की अनुकूलता बन जाती है, ऐसा मानने पर प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। एक बार सत्संग चल रहा था तो सेठ जी ने कहा कि हमारे जो कुछ होता है हमारे मन की होते हैं, हमारे ही मन की होती है जो होता है। तो महाराज जी ने पूछ लिया कि आपके ही मन की क्यों होती है, हमारे मन की क्यों नहीं होती। तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि हम पहले कुछ सोचते ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए, जो हो जाता है उसके बाद हम बोलते हैं कि हाँ हम यही चाहते थे। हमारे बुखार हो जाए, हो तो गया, क्या करें, हम तो यही चाहते थे। और ठीक हो जाए तो हाँ हो गया, अब ठीक हो गया कि हम यही चाहते थे। जो हो जाए कहते यही चाहते थे। हम आपको एक मार्मिक बात बताएं, आपके कोई मामला खराब हो गया, कोई भाई बंधुओं में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, पंचायती बैठी और उस पंचायत में आपके मन के खिलाफ फैसला दे दिया। लोग पूछेंगे कि जी क्या हुआ, कि भाई अब क्या करें, हमारे घर वाले बैठे थे, हमारे पिता माता भी बैठे थे उस पंचायती में, हमसे बड़े लोग भी बैठे थे, अब उन्होंने जो फैसला कर दिया तो हमको स्वीकार करना ही है। अथवा आपसे किसी ने सलाह नहीं ली और आपका खास निजी हितेशी आदमी है, आपका प्रेमी है, और वो जाकर कहीं आपका फैसला, आपके विरुद्ध फैसला स्वीकार कर लेता है, तब भी आप क्या करते हो कि भाई क्या करें, ये मेरा परम हितेशी है, इसने स्वीकार कर लिया, मैं क्या करूं। तो आपको संतोष करना होता है। नहीं तो आपका वो प्रेमी क्या हुआ, हितेशी क्या हुआ, और आपने उसको हितेशी क्या माना। जैसे आपका मन है कि हमारी लड़की की शादी अमुक जगह हो, परंतु आपका बड़ा भाई है वो जाकर तय कर जाता है कि नहीं तुम्हारे लड़की की शादी हमने अमुक जगह तय कर दी, तो छोटा भाई कहता है कि मैं क्या करूं, भाई जी ने कर दी। अब मेरी बेटी की शादी के पीछे भाई जी की बात थोड़े ही मैं लोप करूंगा। ऐसे ही आप लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए। अब ये है खास बात कि ईश्वर के समान हमारा कौन हितेशी है, कौन प्रिय है, कौन दयालु है, कौन सुहृद है, कौन आपका खास हृदय का है। इसलिए उन्होंने जो कुछ हमारे साथ विधान बनाया है उसको प्रेम से स्वीकार करो और उससे हमारा मंगल होगा, ऐसा विश्वास करो। प्रमाण चाहो तो गोस्वामी जी महाराज शंकर जी के द्वारा कहलवाते हैं कि उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भाव यह है कि राम जी के समान हमारा कोई भी हितेशी नहीं, गुरु जी भी नहीं, माता पिता भी नहीं। एक नंबर में गुरु, फिर माता पिता और फिर भाई बंधु, सबका बहिष्कार किया, क्योंकि इनमें से कोई भी राम के समान हितेशी नहीं है। इसलिए ऐसा मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब आपके मन की प्रतिकूलता ये शब्द ही कह रहा, लेकिन हम लोग जो अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, कर्म करने में भगवान की इच्छा मत मानना, होने में ही मानना। जिस प्रकार हम लोग चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्म करते हैं, तो कहीं हम ये समझ लें भगवान करते हैं, हम लोगों से भगवान कराते हैं, बिल्कुल गलत है। ये हम अपने स्वभाव से करते हैं, ये स्वभाव के दोष के कारण से होते हैं, इसमें किसी प्रकार की भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा तो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं तक ही है, आपके करने में भगवान की इच्छा नहीं है। यदि आप ऐसा कहें कि हम अपनी इच्छा से जो कुछ करते हैं उसमें किसी प्रकार का दोष अपराध नहीं होता, यदि ऐसी बात होती तो आपको दंड क्यों दिया जाता। दंड देते हैं इसका मतलब आप जो करते हैं उसमें अपराध है। इसलिए जो कुछ हमारे मन के प्रतिकूल होगा उसको हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा, वो अवश्य होने वाला है। परंतु जो मन के प्रतिकूल होने वाली घटना को दुख पूर्वक सहता है उससे भगवान दूर होते हैं, और जो उसको भगवान की आज्ञा मानता है, भगवान का विधान मानता है, भगवान की इच्छा मानता है और उसमें प्रसन्न रहता है, तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उसके नजदीक आते हैं। जैसे आपके आपने देखा होगा, माँ कभी बच्चे को पीटती है और वो बच्चा माँ के पास ही बैठा रहता है, माँ को ही पकड़ता है, माँ की गोद में रहेगा, तो माँ उसको कितना प्यार करेगी। आपके मन के प्रतिकूल जो कुछ भी कार्यवाही होगी वह तो भोगनी पड़ेगी। अब केवल समझ समझ की बात है। मान लीजिए आप रास्ता चल रहे हैं, किसी ने आपको गाली दी, आप उस समय क्या करोगे? आप संभवतः कहेंगे कि हम इसके दो जूते मारेंगे, दो लाठी मारेंगे, लेकिन समझिए कि आपको किसी ने गाली दी या जूतों से मारा, आप उसे सहन करके चुपचाप चले गए, तो फिर ये मामला वही समाप्त हो जाता है। लेकिन जिसने आपको गाली दी उसकी जगह आपने दो गाली दी, तो उसने दो की जगह चार गाली दी, और वो फिर आपने आठ गाली दी, ऐसे करते करते आपका विवाद बढ़ गया, अंदर का क्रोध द्वेष बढ़ गया। तो इस प्रकार उसको भगवान का विधान नहीं मानने के कारण एक तो आपने सामने वाले को अपराधी बना दिया, क्योंकि उसके मन में भी क्रोध पैदा कर दिया और आप स्वयं भी अपराधी बन गए। आप उसने गाली दी तब दो की जगह बदले में आपने चार गाली दी, तो आपने अपने आप को उससे दुगना अपराधी बनाया कि नहीं? दुगना अपराधी बना दिया। आपके गाली देने पर उसको और विशेष गालियां देनी पड़ी, इस प्रकार से आपने उसको अपराधी बनाया। अब आप ही बताइए कि गाली देने, आपने गाली देना बुरा समझा होता तो फिर आपको बुरा काम नहीं करना चाहिए था। उसने गाली निकाली, आपको बुरा लगा, तो गाली निकालना बुरा है तो बुरा समझा का, आप तो दुगना बुरा करने लगे, तो खुद भी बुरे हुए, दूसरे को भी बुरा बनाया। तो जो काम आप बुरा समझते हैं उसका त्याग आपको करना चाहिए। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति ने आपका अनिष्ट किया है, यदि आप उस समय सहन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको उस समय ये मानना चाहिए कि हमने तो कोई बुरा किया नहीं था, अभी तो इसके साथ कोई बुरा किया, पिछला कोई बुरा काम किया होगा उसका परिणाम है, तो हमारा किया हुआ हमको सहन करना चाहिए। और यदि आप अनिष्ट सहन नहीं करेंगे और बदले में अनिष्ट पहुंचाएंगे, तो ये बदले लेने की भावना बढ़ते बढ़ते आपको पुनर्जन्म का निमंत्रण देगी, इससे तो पुनर्जन्म भी होगा, कल्याण नहीं होगा। तो गंभीरता से सोचो कि एक अनिष्ट को सहन कर लेते हैं तो आपके अनेक अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपने एक अनिष्ट को सहन न करके बड़ी भारी आपत्ति पैदा कर ली, इसलिए बोलते हैं कि आपके मन के प्रतिकूल जो होता है उसको भगवान की इच्छा पर डाल दो, या अपना किया हुआ पिछला प्रारब्ध मान लो और वहीं पर रुक जाओ, आगे मत चलो, नहीं तो आप और दुख बढ़ाओगे और आपकी कार्य सिद्धि भी नहीं होगी। और आपको बताएं, आपके मन के प्रतिकूल कोई काम हुआ, मान लीजिए आपका लड़का मर गया, आप उसके वियोग में चाहे जितना रोते रहिए, लेकिन यह तो मानी हुई बात है कि वो लड़का तो कभी वापिस आएगा ही नहीं, इसलिए आपको इसी प्रकार रो रो करके अपनी इज्जत खराब नहीं करनी चाहिए। भक्त नरसिंह मेहता थे, उनका बेटा मर गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, नरसिंह मेहता अपने मरे हुए बच्चे के पास खड़े खड़े नाच रहे हैं और खड़ताल बजा रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये क्या करते हो, आपका लड़के, आपके लड़के का शव तो आंगन में पड़ा, आप नाच रहे हो तो क्या करूं? अरे लड़का मर गया, रोना नहीं आता कि मैंने थोड़ा ही मारा है, भगवान का विधान है, भगवान आज खुश हो गए भगवान की चीज भगवान के घर जा रही है, रोने की क्या बात है? ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। अब लोगों को नरसिंह मेहता का हंसना समझ में नहीं आ रहा है, नाचना समझ में नहीं आ रहा है, और नरसिंह मेहता को रोना समझ में नहीं आ रहा है। घर में हाय त्राई मच गई, उनकी पुत्र वधु वो पछाड़ खा के रोती है, तो उसके पास भी जाकर उसको समझाने लगे कि बेटा रोने से क्या होगा, ये अपना लड़का था नहीं, तेरा लड़का था नहीं, तेरा पति था नहीं, भगवान के पास चला गया, भगवान की चीज थी, खूब आनंद मनाना चाहिए। तू समझती है कि मेरा पति था तो कब से था, शादी के पहले तो तेरा पति था नहीं, तो शादी से पहले भी भगवान का था, जन्म से पहले भी भगवान का था, मरने के बाद भी भगवान का ही है, तो बीच में भी भगवान का ही था। तूने अपना पति मान लिया तो भाई ये तुम्हारी गलती है। इसलिए हमारा कोई भी आदमी या चीज वस्तु चली जाए तो हम लोग भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप इसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भगवान तो उसकी आत्मा को आपके किसी प्रकार की प्रार्थना न करने पर भी शांति प्रदान करेंगे, पर आप भगवान से शांति के लिए कहेंगे तो आपको शांति हो जाएगी। कोई भी काम के आपके मन के प्रतिकूल होता है उसमें दो कारण हैं। आप स्वयं कभी भी अपने मन के प्रतिकूल कार्यवाही नहीं कर सकते हो, जैसे बाढ़ आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, जैसे बिजली आदि गिर जाए, ये आपके मन के विपरीत तो हुआ, अब करो इसकी कार्यवाही, कुछ नहीं चल सकता। इसी प्रकार दूसरों के द्वारा प्रतिकूल कोई काम दिखता है तो हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। सारा संसार भगवान का है, विधान सब भगवान के बनाए हुए होते हैं, दूसरे पर इस प्रकार से अनिष्ट करने का भाव लादना क्या भगवान का अपमान नहीं है? इस प्रकार भगवान का विधान मानकर प्रसन्न रहना चाहिए। मन के विपरीत जो होता है वो पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होता है। उससे बढ़कर ये बात मानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से होता है, भगवान का ही हाथ है, भगवान की आज्ञा के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। इसलिए भगवान की आज्ञा मानकर खूब प्रसन्न होना चाहिए। इससे भी और ऊंचा भाव यह है कि अपने मन के विपरीत जो भी कार्य होता है उसको भगवान का पुरस्कार समझना चाहिए, भगवान का पुरस्कार है, और इस पुरस्कार में भगवान की दया के दर्शन करने चाहिए। भगवान सब कुछ हमारे मंगल के लिए करते हैं। ये कैसे मानेंगे मंगल के लिए करते हैं? तो बताते हैं कि आपको हैजा या 105 डिग्री बुखार हो गया या पेट दुखने से बड़ा कष्ट हुआ, तो इसमें दया कैसे समझे? मन की प्रतिकूल अवस्था में दुख तो आपको स्वाभाविक ही होने लगता है, क्योंकि आपका किसी प्रकार का अनिष्ट होने पर आप रोते हैं। कुत्ते की तरफ लाठी लेकर मारने दौड़ते हैं, लेकिन कुत्ते के लाठी पड़ने से पहले ही कुत्ता चिल्लाने लगता है। आपने कभी विचार किया कि वो क्यों चिल्लाता है? तो वो इसलिए चिल्लाता है कि वो पुकारता है, किसी रक्षक को पुकारता है, कोई रक्षा करने वाला है, अब कुत्ता रह गया, उसको ये पता नहीं कि कौन रक्षा करने वाला है, पर कोई न कोई रक्षा करने वाला है, वो मुझे बचाएगा, इसके लिए वो पुकार करता है। आप जरा विचार करो कि कोई मेरी रक्षा करने वाला है, इतनी आशा तो कुत्ता भी रखता है। तो फिर हम लोग भगवान के प्रति विश्वास रखने में समर्थ हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। ये जो आपको हैजा या बीमारी आई, ये पाप कर्म के फल के अनुसार आई है। जब उसका फल भोग लेते हो तब आपको शांति मिलती है, आप एक तरह से ऋण से मुक्त हो जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म जब सरसैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने भगवान की स्तुति गाई और भगवान से कहा, ध्यान से, मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाप किया है, हे भगवान, सब बीमारी के रूप में, कष्ट के रूप में मुझे इस समय दे दे, क्योंकि मैं उन सब को भोग करके उऋण होना चाहता हूँ, इस शरीर से उऋण होना चाहता हूँ। क्या पितामह भीष्म मूर्ख थे? वे तो बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान थे। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के अवतार, उनको भी पितामह भीष्म से उपदेश मिला है, उन्होंने भी भीष्म से उपदेश लिया है। जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। इधर भगवान श्री कृष्ण पितामह का स्मरण कर रहे थे, वो उनको याद करें, वो उनको याद करें। प्रातःकाल ही धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के महल में पहुंचे, तब भगवान श्री कृष्ण ध्यान में मस्त थे। जब भगवान ने ध्यान के बाद नेत्र खोले तो सामने युधिष्ठिर को देखा, तो युधिष्ठिर से पूछा, कैसे आए? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहा, महाराज, सारा जगत तो आपका ध्यान करता है, आप भी किसी का ध्यान करते हैं? ये बड़ी रहस्य की बात है, आप यदि बतलाने योग्य समझते हो तो मुझे बतलाओ, गोपनीय हो तो मैं आग्रह नहीं करूंगा। इस रहस्य को आप मुझे बतलाने योग्य समझते हो तो बताइए, और यदि परम गोपनीय हो तो हम आग्रह नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, पितामह भीष्म इस समय सरसैया पर मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। इस समय भीष्म सरसैया पर पड़े हैं और मैं उनसे मिलने की इच्छा से उनके पास ही जा रहा हूं। तुम्हारी यदि उनसे मिलने की इच्छा हो तो मेरे साथ चल सकते हो। देखो युधिष्ठिर, भीष्म के समान शास्त्रों का ज्ञाता अब संसार में कोई भी नहीं है। आज वह शास्त्र रूपी सूर्य छिपने जा रहा है, तुम लोगों को जो बात पूछनी हो पूछ लेना चाहिए। तब पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास उपदेश लेने गए। भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि पांचों पांडव आपसे उपदेश लेने के लिए आए। पितामह भीष्म ने कृष्ण से कहा, मेरे शरीर में जगह जगह बाण लगे हुए हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है, बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, सारे शरीर से खून बहा जा रहा है, इस अवस्था में उपदेश कैसे दे सकता हूं? तब भगवान ने कृपा करके पितामह भीष्म के शरीर का स्पर्श किया और पूछा कि पितामह, अब भी आपके शरीर में पीड़ा है? पितामह ने कहा, नहीं महाराज, अब तो किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। तब भगवान ने उपदेश देने के लिए भीष्म से कहा, भीष्म पितामह ने उत्तर दिया कि हे भगवान, आप सर्वगुण संपन्न साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मैं तो आपके मुख से कुछ उपदेश सुनना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है पिता, मैं लेकिन बात यह है कि मैं आपके मुंह से उपदेश की बात कहलाना चाहता हूं, इसलिए आप उपदेश दीजिए। पितामह भीष्म ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। पितामह भीष्म 58 दिन सरसैया पर पड़े रहे, 50 दिनों तक पांडवों को उपदेश दिया। 58 दिनों के बाद जब उनका अंत समय आया, तब पितामह भीष्म ने प्रार्थना की कि मुझे रोग कष्ट आदि जो प्राप्त होने चाहिए वो आ जाए, क्योंकि मैं अब सब पापों से उऋण होना चाहता हूं। पितामह भीष्म का सारा शरीर युद्ध में बाणों की चोट से बिंद कर छलनी छलनी हो गया। उनके घावों की मरहम पट्टी करने के लिए बड़े बड़े वैद्य आए, परंतु उन्होंने भी असमर्थता बताई कि कहां मरहम पट्टी करें, कैसे करें, मरहम पट्टी नहीं हो सकी। वैद्यों को पारिश्रमिक देकर विदा किया। दुर्योधन से कहा कि मैं अपनी चिकित्सा नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मेरी तो चिकित्सा हो रही है। तुम शरीर की बीमारी को दूर करना चाहते हो और मैं मेरे पाप रूपी बीमारी को दूर करना चाहता हूं, उसका इलाज हो रहा है। उनका सिर नीचे की तरफ लटक रहा था, तकिए की आवश्यकता थी। तकिए के लिए कहा तो लोग दौड़कर रेशम का मलमल का बढ़िया तकिया लेकर लगाए। भीष्म पिता मैंने हंस करके कहा कि ये तकिया लाए हो? दुर्योधन समझते नहीं, जैसी शैया हो वैसा ही तो तकिया होना चाहिए। अर्जुन के लिए कहा, अर्जुन तुम जानते हो ना कि मेरे लिए कैसा तकिया चाहिए, लाओ मुझे तकिया दो। अर्जुन ने 2 बाण मस्तक पर मारे, मस्तक से सिर को भेद कर वो तकिया का काम कर गए, सिर ऊंचा हो गया। कितनी पीड़ा हुई होगी, पर पितामह भीष्म ने कहा धन्य है, धन्य है। थोड़ी देर बाद पितामह भीष्म ने कहा, भाई शरीर से खून बह गया, इसलिए प्यास लगी है, जल की आवश्यकता है। दुर्योधन के सेवक सोने चांदी की झारी लेकर बड़ा अच्छा ठंडा जल लिए, साफ जल हाजिर है। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे योग्य नहीं है, अर्जुन मेरे लिए जैसा जल चाहिए जल दे दो, मरते समय कौन सा जल दिया जाता है उसकी व्यवस्था करो। अर्जुन ने उसी समय पृथ्वी में एक बाण मारा, पृथ्वी से गंगा जी की धारा छलक करके आई और सीधी पितामह भीष्म के मुख के अंदर आकर गिरी। पितामह भीष्म ने कहा कि मरते समय गंगा जल पीकर मरना चाहिए। अर्जुन के बाण से निकली हुई गंगा जी की धारा आज भी बाण गंगा नाम से कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र गए थे, बताया था। गंगा जी का जल बढ़कर वहां एक सरोवर बन गया। पितामह भीष्म अपने कष्ट की चिकित्सा करवाना नहीं चाहते थे। मेरा कहने का आशय अब बता रहा हूं। पितामह भीष्म अपने कष्ट की चिकित्सा करवाना नहीं चाहते थे, वे तो भगवान के सम्मुख मांग रहे थे कि और बीमारी बाकी हो तो भेजो, हम लोग थोड़ी सी बीमारी के अंदर हायत्राई मचा देते हैं। बड़े महापुरुषों का जीवन देखो, कष्ट किनके सामने नहीं आया है। पितामह भीष्म को भगवान का स्पर्श मिला तब भी उन्होंने चिकित्सा नहीं चाही। भगवान के स्पर्श करने से उनका एक बार दर्द कम हो गया, शांत हो गया, परंतु डॉक्टर वे वहां वैद्य लोग चिकित्सा करने वाले मना कर दिया। नहीं, भगवान से कहा और हमारी बीमारी है तो भेजो ताकि मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊं, ऋण से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार के कष्टों से प्रथम तो भगवान के ऋण से मुक्ति होती है, दूसरा बड़े बड़े दुखों के भोगने से एक सहन शक्ति बढ़ती है, और तीसरी बात है कि कष्ट के अंदर भगवान की स्मृति बहुत जगती है। कष्ट में जब मनुष्य को अपनी मृत्यु निकट दिखाई पड़ती है तब उसकी पाप में प्रवृत्ति नहीं होती है। बुरे कर्मों में जो प्रवृत्ति होती है वो पूर्व जन्म के पाप का परिणाम है, उससे बचना चाहिए। और कष्ट में भगवान की स्मृति होती है तो उसमें बेड़ा पार है, आपको लाभ कितना हो रहा है। कष्ट होता है इतना अंश तो आप देखते हो, लेकिन उस समय में भगवान की स्मृति होती है, पाप का नाश होता है, लाभ कितना होता है, लाभ की तरफ विचार ही नहीं करते। इसलिए जब कभी कोई कष्ट आ जाए तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझे। पुरस्कार न समझ में आए तो भगवान का विधान है, और मेरे पर भगवान की गुप्त रूप से दया हुई है, ये गुप्त रूप से दया माननी चाहिए। कोई भाई पूछे कि लड़का मर जाए तो हम क्या समझें, या घर में कोई प्राणी मर जाए तो हम क्या समझें, कि भगवान की दया का पुरस्कार समझो। कि लड़का मर गया इधर, आपको पुरस्कार दिखता है, कैसे समझें उसको पुरस्कार। तो कहते मान लीजिए लड़का मर गया, आप उसका विशेष हित चाहते हैं तो भगवान से उसके आत्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। आपको अपना हित करने के लिए भगवान ने भजन ध्यान का मौका दिया है, भगवान आपको चेतावनी दे रहे हैं कि देख तेरा लड़का मर गया, तेरे से छोटी आयु वाला चला गया, अब तुम चेत करोगे, अब तुम्हारी कितने दिनों की आयु है, तुम्हारी तो बारी लड़के से पहले आनी चाहिए थी, नहीं आई तो आने वाली तो है ही। ऐसा मानना चाहिए कि लड़का मर गया तो झंझट मिट गया। यदि किसी के पुत्री नहीं हो तो बहुत ठीक है। मैं तो अपने पर भगवान की बड़ी भारी दया मानता हूं कि जो मुझे पुत्र नहीं मिला, सेठ जी बोलते हैं अपने लिए। कई तो पुत्र के लिए हाय त्राही मचाते हैं, हमारे तो पुत्र नहीं हुआ, हम तो बहुत आनंद मानते हैं, भगवान की बड़ी भारी कृपा मानते हैं, क्योंकि पुत्र का दुख तो मुझे कभी होने का ही नहीं है, क्योंकि पुत्र हुआ ही नहीं तब उसके मरने का मुझे दुख कैसे होगा, ये भगवान की कैसी कृपा हुई। पितामह भीष्म के पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या उनके घट गया। भीष्म की तो स्वयं भगवान कृष्ण ने भी प्रशंसा की है, इसलिए पुत्र के मर जाने के बाद चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान की चीज भगवान के पास चली गई, आनंद पूर्वक भगवान के पास भेजना चाहिए। जिस प्रकार आज कोई भाई हमारे पास आया और बोला कि अपनी तिजोरी में 1000 रुपए तथा गहने का डिब्बा रख लो, तो हमने उसको कहा अरे यहाँ गंगा जी के किनारे तुम सत्संग करने आए हो, ये जोखिम की चीज क्यों लाए, जबकि हमने कल्याण में सूचना निकलवा दी कि कोई जोखिम की चीज यहाँ सत्संग में लेकर नहीं आनी चाहिए। बोले अब क्या करें, ले तो आए। अब फिर हमने उसका सामान रख दिया उसका सामान। थोड़े दिन बाद 5-7 दिन बाद वो आए, कहने लगे कि साहब हम वापिस जा रहे हैं, हमारे रुपए और गहने का डिब्बा वापिस दे दो, हमने कहा भाई ले जाओ, अच्छा रहा, हमारी जिम्मेदारी, हमारी आफत कम हो गई। यदि नीयत खराब करके उनको हम देना नहीं चाहते, अपने पास रखना चाहते, तो कोई आज हम पर विश्वास करता? ये हमारी बेईमानी होती। इसी प्रकार से ये समझना चाहिए कि आपका, आपकी स्त्री, पुत्र, भाई आदि का, माता पिता आदि का जो भी शरीर है वो भगवान की आपके पास धरोहर है। भगवान ने आप पर विश्वास किया था कि ये धरोहर इनके पास रखेंगे, इतने दिन बाद हमको प्रेम से मिल जाएगी। अब आज जब भगवान वापस लेने आए तो आप रोना धोना मचाते हो और उसमें आनंद पूर्वक लौटाना नहीं चाहते हो, तो भगवान की धरोहर वापस उनको न संभला करके आप बेईमानी तो हो रहे हो। देखो भाई, ऐ बातें तो कोई बहुत बड़ा महापुरुष ही कह सके। इस प्रकार आप भगवान की चीज यदि वापिस प्रेम से बिना बेईमानी के लौटाते हो, अब भगवान ने हमको आपका सेवा का मौका दिया, ये भगवान की कैसी हमारे पर कृपा हुई, ऐसा मानना चाहिए। भगवान की सेवा करना कितनी बड़ी चीज, भगवान की सेवा हो गई, प्रतिकूलता में लड़के के मरने पर खुशी पूर्वक हमने उसको सहन कर लिया, भगवान की पूजा हो गई। लड़का क्या है भाई, हाड़ मांस का पुतला ही तो है, और क्या है। माता को पुत्र के कारण बहुत कष्ट होता है, गर्भ में आता है तब कष्ट होता है, डॉक्टर की शरण में जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, पुत्र पैदा होता है तब कष्ट होता है, प्रसव काल में कई तो माताएं मर जाती हैं, पुत्र पैदा होता है तब बहुत कष्ट होता है, और फिर उसके पालन पोषण में टट्टी पेशाब साफ करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहा, देखा जाए तो सब दुखों की खान है। और वो कहीं भी टट्टी पेशाब कर दे उसको साफ करो, बच्चे का कब खंखार बलगम गंदी गंदी चीजें ये फेंकता ही रहता है, बच्चा बीमार पड़ता है, चिंता करते हैं, वैद्य डॉक्टर को बुलाते हैं, इलाज नहीं होता है, मर जाता है, रोते हैं, पुत्र बड़ा हो गया, आपके मन के सुख के महल आपने जो बनाए थे कि बस ऐसे तो बहू आएगी, ऐसे पोते होंगे, घर में बहू आ गई और मुझको सुख से भोजन बनाकर खिलाएगी, ऐसा आप समझते थे, पता है क्या हुआ, फिर देखो आपके घरों में क्या होता है, सासुर बहू रोज लड़ते फिरते रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, ससुरार पियारी लगी जबते रिपु रूप कुटुंब बहे तबते, जब स्त्री उसके पीछे आ जाती है, लग जाती है, तब घर के सब लोग कुटुंबी शत्रु के समान दिखाई पड़ते हैं। फिर भी आप इन कलयुगी बहुओं से अपने लिए सुख की आशा करते हैं, बड़ी भारी मूर्खता है। फिर पुत्र आपसे कहने लगेगा, घर का मालिक मैं हूं, आप कौन हो, फिर भी माँ ज्यादा हूं हा करती है, तब उसके खर्च के लिए 40-50 रुपया मासिक बांध देते हैं, बस ठीक है, इतने रुपए में काम चला लो, इससे अधिक और कुछ नहीं है हमारे पास। हमने आंखों से देखी घटना, लोग भी सुनाते रहते हैं। एक स्त्री थी, वह अपनी पुत्री को अपनी बहू से छिपा छिपा कर चीजें दिया करती थी, कभी दाल, कभी चावल, कभी घी, कभी गेहूं, ऐसे चुपचाप देती है अपने बहू से छिपा करके। एक दिन उसकी बहू ने देख लिया कि मेरी सासू मेरी ननद को खूब सा सामान देती है। उस बहू ने सास से पूछा, आज बाई जी ने काई दियो? तब सास ने उत्तर दिया, क्यों मेरे जची जी की देऊं, तने के मतलब है, मारी बेटी है, तू कोई घर की मालकिन है के, घर की मालकिन मैं हूं, चावे जी ने देऊं, नहीं तो कौन दे, मारी मर्जी जो करूं। तब बहू ने कहा कि इस प्रकार ये थे चोरी कर कितना दिन काम चला, वो तो चोरी करो। थाने बाई जी ने जो चीज देनो है सामने देओ, छिपा कर क्यों देओ? तब सास बोली कि मैं तो यही देऊं, मार तो यही देने की इच्छा है, मैं तो यही देऊं, मालकन मैं हूं, मैं करूं जकी हुई तू करी जकी थोड़ी हुई। सासू बहू की लड़ाई होगी। शाम को पुत्र घर पर आया, पता लगने पर मां दौड़कर दरवाजे पर गई और पुत्र से कहने लगी, बेटा थारी बू मन आज यूं बोली यूं बोली यूं बोली, पहले ही जा रहा आपने बेटा ने बिड़ा दी। तब घर में आकर अपनी स्त्री से पूछा, क्यों के बात है? बहू ने जवाब दिया कि मारे जब मौको मिले तब घर की चीज उठा उठा बाई जी दे दे, जो लेना देना वह भी हिसाब तो होना चाहिए। नहीं, यही लड़ाई हुई और कोई कारण नहीं है। पुत्र ने कहा, रसोई आज क्यों नहीं बनाई गई? तब कहा, घर में लड़ाई हो रही थी, कौन रसोई बनाए? माँ ने कहा मैं नहीं बनाती, स्त्री ने कहा मैं भी नहीं बनाती। अब पुत्र माँ को कहता है कि माँ अब घर में लेन देन सब बहू करेगी, आप नहीं करोगी। माँ तू अपनी रसोई अलग बना ले, तुझे 20 रुपया महीना खर्च के लिए मिल जाया करेगा। का ये पंचायती ये देखा हमारे आंखों के सामने हुआ। अब माँ सिर पकड़कर रोती है, कहती है, नालायक मैं तुमको गोद लिए लिए लाई थी, इसलिए लाई थी क्या? तेरे को इसलिए पाला था क्या? पुत्र कहता है कि दुनिया में लोग गोद लेते हैं, इसी प्रकार तूने मुझको गोद लिया है। माँ कहती है मैं घर की मालकिन हूँ। लड़का कहता है, लड़का जवाब देता है, माँ कहने मात्र से आपको घर की मालकिन भले ही मान लूं, पर जब मैं गोद में आ गया हूँ तो घर के मालिक तो मैं ही हूँ, आप कहाँ से बने? बस इतनी सी बात हो जाए। अब यदि आपको भोजन करना है दोनों समय खाना मिल जाएगा, चूल्हा नहीं तो अलग अलग चूल्हा बना लो, खाओ पकाओ, 20 रुपया महीना ले लो, इसमें जो खर्चा होता है वो करो। आजकल इस प्रकार की दुर्दशाएं घर घर में हो रही है। इसलिए पुत्र को गोद लेना तो रिसीवर बैठाने के समान है। मारवाड़ी कहावत है, लड़का ने जायवड़ा भला न आयोड़ा भला। इसलिए इन पंचायती का कोई अंत नहीं है। आप लोगों से यही प्रार्थना है, यदि आपकी मेरे पर विशेष दया है तो आप यही भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान मेरे को पुत्र मत देना। यदि आप भजन ध्यान साधन करके अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो तो आपको पुत्र के जन्मने का नाम भी नहीं लेना चाहिए कि मारे बेटो वे पोतो वे। भगवान का नाम लेना चाहिए, बेड़ा पार है, नहीं तो ये लड़का रूपी पत्थर आपके गले में बंध गया तो पत्थर बांधकर नदी में डूब मरने के समान है। फिर आपके जो अच्छा लगे सो करो, हमको तो जो लगी बात अच्छी आपको बता दी। गोद लेने वाली बात तो किसी भी एक भाई को लक्ष्य करके नहीं कह रहा हूं, किसी को नाराज नहीं कर रहा हूं। मेरा तो अनुरोध है कि गोद लेने वाली बात तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। यदि आप लड़का गोद लेंगी तो आपकी बड़ी दुर्दशा हो सकती है, फिर आपके जैसी इच्छा हो वैसा करो, मुझे आपत्ति नहीं है। तो जो काम होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। भगवान आपके पुत्र को अपने पास बुला लिया, आनंद पूर्वक रहो। आप लोग जो भगवान के विधान का तिरस्कार करके पुत्र गोद लेते हो ये बड़ी भारी मूर्खता है। आपको समझना चाहिए कि पुत्र यदि हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता तो भगवान ही देते। मारवाड़ी कहावत है, कुआ तेरी माँ मरी तो मरी, कुआ तेरी माँ जी तो जी, यानी कुएं पर जैसा बोलोगे वैसा ही निकलेगा। तो जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। कुवे के अंजार कोई बोले कि थारी माँ मर गई तो बाप पाछी आवाज आवे थारी माँ मर गई। कुवे के अंजार बोले थारी माँ जीगी, थारी माँ जीगी। ऐसे भाई कुआ तेरी माँ मरी तो मरी, कुआ तेरी माँ जी तो जी। तो ये तो सब भगवान अपनी इच्छा से करते हैं, आपके कर्म के अनुसार करते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान की तरफ चलने वाला प्रतिकूलता में किसी प्रकार से अपने मन पर कोई असर लाने ही नहीं देता। भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में निवास करती है वहां क्रोध आदि का स्थान ही कहां है। प्रहलाद जी को देखो, प्रहलाद जी को विष भी पीना पड़ा, प्रहलाद जी को आग में भी जलना पड़ा, पर प्रहलाद जी जरा से भयभीत नहीं हुए। प्रहलाद विष को पी गए, अमृत बन गया। मीराबाई के पास राणा जी ने विष भेजा, मीराबाई उस विष को पी गई, अमृत बन गया। यही तो भक्त की महिमा है। प्रहलाद के सामने परिस्थिति नहीं टली, परंतु प्रहलाद ने भक्ति के द्वारा प्रतिकूलता को अनुकूल बना लिया। मान लीजिए मैं जिसको अपना खास आदमी मानता हूं और उसको बिना पूछे ही उसके लिए बात तय कर दी और उसके लिए फैसला कर दिया तो आनंद होना चाहिए। वो समझेगा कि जयदयाल का मुझ पर कितना अपनत्व है, मेरी बात पूछे बिना ही इसने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया। इसी प्रकार मान लीजिए कहीं चंदे चिट्ठे का काम है, मैंने घनश्याम से बिना पूछे ही 100 रुपए लिखवा दिए, उसमें घनश्याम को प्रसन्न होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? क्योंकि मेरे द्वारा उनकी पूंजी में से 100 रुपया निकाल लिए गए, उसका धन घटा, परंतु घनश्याम नाराज नहीं होगा। वो देखेगा कि देखो जयदयाल मुझे कितना अपना मानता है कि मेरे रुपए में से 101 रुपया चंदे में देकर कितना हित का काम किया है। इसी प्रकार घनश्याम के पुत्र को मैंने 4 थप्पड़ मार दिए, वह रोता हुआ घनश्याम के पास गया। घनश्याम ने पूछा तेरे को किसने थप्पड़ मारा? वो कहता है जयदयाल जी ने मारा। तो घनश्याम समझता है कि लड़के के पीटने में उसका हित था, तब जयदयाल ने मारा है। लड़का रोता है लेकिन घनश्याम का जयदयाल के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होता। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जो मनुष्य अपने धन का या पुत्र का नाश होने पर प्रसन्न होता है तब वे भगवान का भक्त हो जाता है। एक समय शिवजी पार्वती जी के सामने भक्तों की प्रशंसा कर रहे थे, यही बातें चल रही थी। पार्वती जी ने कहा हे महाराज, इतना दुख देने पर भी आपके लिए ये भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, दुख में भी ऐसे कोई भक्त हैं क्या? जरा दर्शन कराओ। शिवजी ने कहा कि जरूर कराएंगे, कल तुमको भक्तों के दर्शन कराने के लिए साथ में ले चलूंगा। शिवजी पार्वती जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बन गए, एक भक्त के आ गए। शिवजी के भक्त ने उनका खूब स्वागत किया। शिवजी का भक्त बड़ा गरीब था, घर में 2 ही बकरियां थी। दूध निकाल करके भक्त ने खीर बनाई। शिवजी पार्वती जी को ब्राह्मण ब्राह्मणी जान करके बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन करने के बाद शिवजी पार्वती जी चले गए। रस्ते में पार्वती जी ने कहा कि भक्त तो बहुत अच्छा मालूम देता है, आपने बदले में उसको कुछ दिया नहीं, ऐसे खा पी करके ही आ गए, कुछ उपकार तो करना चाहिए ना। बड़े आदमी यदि अपने से छोटे के यहाँ कुछ भी चीज ग्रहण करते हैं तो उसके बदले में उसको कुछ ज्यादा ही चीज देते हैं। फिर आप तो त्रिलोकी के मालिक हैं, आपकी जो इच्छा हो वही चीज उस भक्त को दे देते। शिवजी ने कहा ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है। अब दूसरे ही दिन उस भगत की दोनों बकरियां मर गई। शिवजी ने कहा कि हमने काम कर दिया है, तुमने कहा वो काम कर दिया है। पार्वती जी ने कहा क्या हो गया कि उसकी दोनों बकरियां मार दी, दोनों बकरी मर गई। पार्वती ने कहा ये क्या किया, ये आपने श्राप दिया कि वरदान दिया, ये तो उल्टा आपने उन्हीं बकरियों का दूध पिया, उसने इतना आपका स्वागत बकरियों को मार दिया। शिवजी ने कहा देख भाई, जो हित की बात है वो करनी होती है और जो हित होता है वही वरदान कहलाता है। कि महाराज इसमें भगत का क्या हित हुआ? शिवजी ने कहा तुमको दिखला दूंगा, तुमको दिखला दूंगा कि ठीक है महाराज, समय लगेगा। समय से दो महीने के बाद फिर शिवजी महाराज और शिवजी महाराज पार्वती जी को साथ लेकर उसी भक्त के आ गए। पहले तो बकरियां थी, तब भक्त ने उनको खिलाया पिलाया। जब पहले तो बकरियां थी तब भक्त उन बकरियों को खिलाता पिलाता चराता दूध निकालता कई काम समय में बिता देता था। बकरियां तो मर गई। अब शिवजी के ध्यान में मस्त था। सामने शिवजी पार्वती जी खड़े हैं, लेकिन भगत तो ध्यान में मस्त है, कोई परवाह ही नहीं है। उसे क्या परवाह कि शिवजी पार्वती जी भूखे हैं या प्यासे हैं, उनको आसन देना चाहिए सत्कार करना कुछ पता ही नहीं, मस्त होता। तब शंकर जी भगवान ने पार्वती जी से कहा देख, पहले इसके दो बकरियां थी तब सारा समय बकरियों में लग जाता था, अब देख झंझट मिट गई, रात दिन मेरा भजन करता है। पहले तो मेरी तथा बकरियों की दोनों की सेवा करनी पड़ी, अब देख 16 आने मेरी सेवा करता है। यदि इसकी बकरियां नहीं मारी जाती तो बकरियों से बकरियों का समुदाय बढ़ता, उनके भी आगे बकरियां बढ़ती जाती है, तो इसका झंझट बढ़ जाता, बकरियों का झुंड हो जाता। फिर जो 8 आना मेरी सेवा करता था वो सब बट्टे खाते चली जाती, फिर दिन भर बकरियों की सेवा करता। तब शिव जी की बात पार्वती जी की समझ में आई, अब आप जो करते हैं सो ठीक करते हैं। इसलिए भगवान के विधान में ऊपर से चाहे किसी प्रकार से गड़बड़ हो, दिखता है दिखाई दे, अंदर से भगवान का हित भरा रहता है। भगवान के विधान में अपना हित ढूंढो। भगवान का विधान हमको बुरा क्यों लगता है कि हम हित नहीं ढूंढते, उसमें सुख ढूंढते हैं। सुख तो मिलता नहीं है और हित को हम ढूंढते नहीं है, इसलिए हम रोते रहते हैं। हित ढूंढना चाहिए, ये हमारा काम है। भगवान ने तो हित का काम कर दिया। ये बात आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। एक छोटा लड़का है, माँ बाप ने उसका नाम महादयाल रख दिया। माता पिता कहते हैं महादयाल रोटी खा, यहाँ आ वहां बैठ, इधर जा उधर जा, वो कुछ नहीं समझता। धीरे धीरे वो 2 साल का हो गया तब समझने लगा कि अरे मेरा नाम तो महादयाल है। अब वो अपने आप को महादयाल समझने लगा। कुछ दिन बाद समझने लगा बस मैं ही महादयाल हूँ। बात वास्तव में झूठी है, घर वालों ने झूठा अभ्यास करवा दिया और वो उस झूठे को सच्चा मानने लग गया। मेरा नाम जयदयाल है, वास्तव में जन्म के पहले जयदयाल नाम नहीं था, माता के पेट में भी जयदयाल नाम नहीं था, जन्म के बाद भी नाम नहीं था। पैदा हुआ किसी ने कहा कि गीगला है, आरंभ का नाम तो गीगला ही रहता है, गीगला माने छोटा टावर गीगलो। बाद में परामर्श करने के बाद जयदयाल नाम रखा, फिर भी मैं नहीं समझता था। बार बार कहने पर मुझे लगा अब मुझे जयदयाल कहते हैं ऐसा मानने लग गया। मानते मानते मेरे मन में पक्की बात बैठ गई। अब यदि कोई जयदयाल को गाली देता है, जयदयाल को मरने मारने को तैयार होता है, तो वो गाली मेरे को लगती है, मैं अंदर से उद्वेलित होता हूँ। वस्तुतः मैं जयदयाल तो हुई नहीं ना, फिर कोई लाख गाली निकाले मेरे क्या फर्क पड़े, मैं क्यों सिर फोड़ू? बस यही अज्ञान है। उसका अपमान किया तो मेरा अपमान। क्या आप शरीर हो? शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आपका शरीर से कोई लेना देना ही नहीं। मान अपमान शरीर का होता है, बीमारी सिमारी जन्मना मरना शरीर का होता है। आपने शरीर को मैं मान लिया तो आपको तकलीफ हो गई। निंदा स्तुति हुई नाम की तो साहब जयदयाल की हुई, तो मैं जयदयाल हूं ही नहीं तो मेरे क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही आप हमको सोचना चाहिए कि मैं शरीर हूं ही नहीं तो मेरे कोई प्रतिकूल है ही नहीं, कोई अनुकूल भी नहीं है, न मेरी निंदा है न मेरी स्तुति है, न कोई हर्ष है न कोई शोक है। ऐसा जो समझ के चलता है वो वास्तव में संसार में सबसे ज्यादा सुखी है।